ओडी फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गार्लिक कीजी, सारे घर का फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी डिस्काउंटेड प्राइस से मिल जाता। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंट एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773। ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ऑन्टेरियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660, quicktruckloop.com।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां मारने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC, एम्बिशंस मेड रियल।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-0241
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में पे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकविल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663। विलेज टेस्ट।
Nasir Shah, Shah Entertainment's present Mega Mela Halal Food Festival and Property Expo 2024, Saturday, August 10 at Brampton Fairground. Fun food entertainment puri family ke liye.
Live musical performances by Pakistani and local Canadian singers Shazia Manzoor, Malko, Sara Altaf, Joji Ali Khan, Shabnam Majeed, Mohsin Shaukat Ali, Faisal Raza, Shigufta Ghazal, Falak Ijaz and Rumbi Chauhan.
On Saturday, August 10 at Brampton Fairgrounds. Free entry.
For sponsorship and stall booking, call Nasir Shah 416-940-0339 or Waqas Sayyid 647-712-7000.
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस तो बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो। 905-607-5000
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
वो ना माजी भाई एक ना कब्रिस्तान था तो कब्रिस्तान के बाहर ना चार दीवारी बनाई जाने का मामला चल रहा था। तो बहरहाल कुछ लोग मस्जिद की तामीर का कह रहे थे, कुछ कह रहे थे कि भाई ये चार दीवारी बननी चाहिए, कुछ कह रहे थे नहीं बननी चाहिए। तो वो एक आदमी था, वो कहता है यार चार दीवारी बनाने की जरूरत क्या है, जो कब्रिस्तान के बाहर है वो कब्रिस्तान के अंदर जाने नहीं जाना चाहते, और जो अंदर पड़ गए हैं
वो बाहर
बेचारे बाहर आ ही नहीं सकते, तो चार दीवारी की क्या जरूरत है। कई ये बात सोचने की हम कब्रिस्तान की कि चार दीवारी क्यों बनाते हैं, बताएं
कि लोग अंदर से बाहर आ जाए।
नहीं, अंदर से बाहर वाले तो आ ही नहीं सकते,
तो बस फिर
तो जो बाहर है उनको तो जुल्म मरने को चाहता ही नहीं,
तो भी अंदर जा सकते।
तो फिर चार दीवारी की क्या जरूरत है मस्जिद में,
नहीं बता
कब्रिस्तान में
नहीं बतानी चाहिए,
बनानी नहीं चाहिए, हम बना लेते हैं।
बना लेते कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं ना आप, तो एक बंदा ना, एक चर्सी होता है वो, बड़ा जबरदस्त चर्सी, वो पुलिस वालों को भी पता होता है ये चर्सी है ये, वो हर जगह जहां चर्स पीता है वो पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं उसको। तो उसने कहा यार मैं जो है ना उस पर चला जाता हूँ कब्रिस्तान में, वो कब्रिस्तान में चला गया जाके वो बैठ के चर्च पी रहा था।
अच्छा, तभी चार दीवारी बनाते हैं ताकि आप जैसे चर्सी न चले जाएं।
अब उसने देखा कि दूर से पुलिस वाले आ रहे हैं, तो फौरन उसने ना वो जहां पर उसकी चर्च रखी हुई थी ना वो छोड़ के एक दूसरी कब्र के पास जाके बैठ गया। तो पुलिस वाले आ गए उधर, कहने के क्या कर रहे हो तुम, कहने का सर मैं अपने अब्बा की कब्र पे दुआ पढ़ने आया था इतनी रात को। कहने का दिन भर काम करता हूँ, रात को एक वक्त मिलता है मुझे, मैं इधर आ गया था। कहने का अच्छा, मगर ये कब्र तो किसी बच्चे की है। कहने का सर मेरे अबू बचपन में ही फौत हो गए।
बच्चे से मुझे याद आया कि एक मैथमेटिक्स की टीचर थी, उसने एक बच्चे से पूछा, फर्ज करो तुम्हारी अम्मी तुम्हें 10 रुपए दे और 10 रुपए में से 5 रुपए वापस ले ले, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा। उसने कहा राज की लड़ाई और 5 रुपए।
सही बात है,
है कि नहीं?
ठीक है, ठीक है। ये इस पे तो मुझे वही याद आता है उनका, आपके ईद का जमाना और ईदी।
हाँ ना, मेरी अम्मी ने भी सारी उम्र जितनी मुझे ईदी मिलती थी अम्मी, अगर मैं किसी न किसी तरह ले लेती थी तो मैं अम्मी से कहा करती अम्मी जान आपने मेरा 1 लाख से तो रुपया जरूर देना है ना। तो अब मेरा बेटा ये कहता है कि मॉम यू डेफिनेटली ओ मी मोर देन 100,000। एनीवेज साहब, शुक्रिया हमारे उन स्पॉन्सर्स का जिनके तवस्सुल से ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत पे पेश करते हैं। बाय द वे मैं बताना चाहती हूँ 31 तारीख को एक प्रोग्राम होने जा रहा है और ये भी प्रोग्राम बड़ा खास प्रोग्राम है। विदबी में ये प्रोग्राम होने जा रहा है और इसमें अहमद जहां जेब तशरीफ ला रहे हैं और मौजम साहब जो गाते हैं और जनाब जगजीत सिंह की आवाज में बहुत खूबसूरत गाते हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं इसके बारे में जाना, इट्स लाइव इन कॉन्सर्ट है। अहमद जहां जेब लाइव परफॉर्म करेंगे 31 अगस्त को और लाइव गजल कॉन्सर्ट जो है जिसमें मौजम अली खान परफॉर्म करेंगे और ये पेश करेंगे जनाब जगजीत सिंह की आवाज को। ये 500 विक्टोरिया स्ट्रीट वेस्ट विटबी में होने जा रहा है और आपने धर्म समर फेस्ट गूगल कर लीजिए, धर्म समर फेस्ट। मजे की बात यह, इसको हम टेलीविजन, हम अवार्ड्स, हम न्यूज, एवरी हम चैनल इज कवरिंग और टीडी बैंक इसको स्पॉन्सर कर रहा है। आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, इसमें आप लिमिटेड वीआईपी सीट लेना चाहते हैं या अगर आप इसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए 416-897-1683 पे आप कॉल कीजिएगा। धर्म समर फेस्ट 2 दिन है, 31 तारीख को, 31 अगस्त को और 1 सितंबर को ये प्रोग्राम होगा। एक और चीज, चांदनी हॉल्स का जिक्र करना चाहती हूँ। चांदनी हॉल्स क्रिएटिंग स्पेक्टेक्युलर इवेंट, अगर आपने कोई शादी है, मंगनी है, बर्थडे पार्टी, दे हैव वैरायटी ऑफ हॉल्स. अगर आपने आउटडोर में जाके, गोल्फ कोर्स में जाके करनी है तो दे डू हैव शीशे का घर, इनका वहां पे भी है. अगर आप विद इन सिटी करना चाह रहे हैं, दे हैव नंबर ऑफ हॉल्स. तो चांदनी हॉल्स को अगर आपने विजिट करना है, इनकी वेबसाइट पे तशरीफ लाएं, एंड दैट इज www.chandanihalls.ca. लाडी साहब इसको रन कर रहे हैं भाई, बड़ा ही क्लासिक जगह है. खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी भी वैरायटी का खाना आपने, पाकिस्तानी, इंडियन, वेस्ट इंडियन. इट हैज हैव अ 30+ ईयर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस. चांदनी हॉल्स के बारे में मैं आपसे तस्करा कर रही थी. जी माजिद भाई, गीत कौन सा सुना रहे
हैं? सब सतिंदर सरताज की आवाज में एक बहुत खूबसूरत गीत है ये, रुतबा. क्या आवाज पाई है, क्या शख्सियत है इस इंसान की. आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ दिस गाय. समाप्त फरमाइए रुतबा, सतिंदर सरताज की आवाज.
कितनी तेरा रुतबा घटदा जे हस के बुलावे किधरे. कितनी तेरा रुतबा घटदा जे हस के बुलावे किधरे. कितनी शानो शौकतां जांदियां मोहब्बतां जतावे किधरे. कितनी तेरा रुतबा घटदा जे हस के बुलावे किधरे. चेरा पिछों जदों एहसास होणगे उदों दिलदार नहीं ओ पास होणगे. रंगले जहान दियां रौनकां च वी दिल किसे गल तों उदास होणगे. हाले भी कुछ सोच लै वे मैरमा जे मन समझावे किधरे. हाले भी कुछ सोच लै वे मैरमा जे मन समझावे किधरे. किते निशानो शौकतां जांदियां मोहब्बतां जतावे किधरे. किते नी तेरा रुतबा घटदा जे हस के बुलावे किधरे. सानू साडी गल दा जवाब दे जाई महंगे एहसासां दे हिसाब दे जाई. ईदी पत्ती पत्ती कुर्बान हो गई सानू ही सैद दा गुलाब दे जाई. के मैं कम होनिया ने मालिया जड़ा नू पानी पावे किधरे. हमें कम होनिया ने मालिया जड़ा नू पानी पावे किधरे. कितने निशानो शौकतां आजादियां मोहब्बतां जतावे किधरे. किते नी तेरा रुतबा घटदा जे हस के बुलावे किधरे. जिंदगी दा मायना साकार होएगा जदों दिल किसे ते निसार होएगा. हाले ता कहानियां दे वांगरा लगे सच लगू जदों ए प्यार होएगा. सरे जे मेहरमानिया प्यारिया आ दिल सोने लालवे कितरे. सरे जे मेहरमानिया वे प्यारिया दिल सोने लाल कितरे. किते निशानो शौकतां जांदियां मोहब्बतां जतावे किधरे. किते नी तेरा रुतबा घटदा जे हस के बुलावे किधरे.
ਸਾਜਣਾ ਵੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿੱਤ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਈਓ ਤੈਥੋਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੰਗਦੇ ਕਾਨੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਹੱਸਦੈ ਛਬੀ ਲਿਆ ਜੇ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾ ਲਵੇ ਕਿਧਰੇ ਕਾਨੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਹੱਸਦੈ ਛਬੀ ਲਿਆ ਜੇ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾ ਲਵੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਤਾਲਵੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਨੀ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਦਾ ਜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਕਿਧਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਜਤਾਉਣਾ ਹੱਕ ਵੇ ਰੋਬ ਤੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੱਕ ਵੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਤਾ ਲਵੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਨੀ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਦਾ ਜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਕਿਧਰੇ ਤੋੜ ਵੇਖ ਲੈ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਏ ਬਸੇਰਾ ਚੰਨ ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਕੋਰ ਵੇਖ ਲੈ ਆ ਗੀਤ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਏ ਹਾਣ ਦਾ ਜੇ ਰੂਹਾਂ ਚ ਵਸਾ ਲਵੇ ਕਿਧਰੇ ਆ ਗੀਤ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਏ ਹਾਣ ਦਾ ਜੇ ਰੂਹਾਂ ਚ ਵਸਾ ਲਵੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਨੀ ਤੇਰਾ ਰੁਕਦਾ ਘਟਦਾ ਜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਕਿਧਰੇ
ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਹਤ ਅਲੀ ਫਰੋਮ ਮੇਗਾ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਮ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਸੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜਨੇ ਹੈ ਯਾ ਮੰਗਵਾਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮ ਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਹਮਾਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9052794754 ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 4196 ਕੋਥਰਾ ਰੋਡ ਮਿਸਿਸਾਗਾ
ਕਹੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਝਟਪਟ ਮੌਰਗੇਜ ਦਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਆਸਾਨ 11 ਸਾਲ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਔਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾਮੰਦ ਨਾਮ ਹਰ ਕਿਸਮ ਕੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੌਰਗੇਜ ਕੇ ਲਿਏ ਮੌਰਗੇਜ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀ ਜੈਸਮਿਨ ਪਰਮਾਰ ਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੌਰਗੇਜ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ ਸੈਕਿੰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਕੇ ਲਿਏ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਮੋਸਟ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਜੈਸਮਿਨ ਪਰਮਾਰ ਸੇ ਨੰਬਰ ਟੂ ਕਾਲ 6479235659 6479235659 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10530
ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਫਲ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਇੱਥੇ ਮੱਛਲੀ ਅੰਡੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਤੇ ਸਸਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ ਮੱਲੇ ਪਕੌੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਗਰਮ ਸਮੋਸੇ ਮਿਲਦੇ ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ
ਸਕਾਰਪੁਰੋ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 200 ਮਾਰਗਮ ਰੋਡ ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਮਾਰਗਮ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡਨ ਦਾ ਸੰਗਮ ਫੋਨ 4162643111
Tele Time Electronics, LEDs aur home appliances ki hottest aur branded range ke saath 0% finance, guarantee on lowest prices aur free delivery in GTA. To intezar kaisa? Abhi visit kare Tele Time Brampton, 280 Rutherford Road, ya Springdale Square Shopping Center, ya Etobicoke, 1770 Albion Road, ya 9909 Markham Road. مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 9054551666
टेलीटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
यह प्रोग्राम एक बार फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। रूबी ज्वेलर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपने जेवरात देने हैं सोने गोल्ड के, पाकिस्तान में जो ज्वेलरी लेने के हम हैं बाज़ औक़ात जड़ाऊ जेवरात, चाहे वो इयररिंग्स हों चाहे पेंडेंट्स हों। बाय द वे इनके पास छोटे पेंडेंट सेट्स भी मौजूद हैं रूबी में, जुमुरद में, फिरोजे में। आप एक बार रूबी ज्वेलर्स पे पहुंचे जरूर। मॉल्टन के इलाके में जो नॉर्थ ऑफ डेरी ऑन एयरपोर्ट रोड, वहां एक मस्जिद है। मस्जिद के बिल्कुल आप राइट ऑपोजिट तो मस्जिद देखिएगा 7086 एयरपोर्ट रोड पे रूबी ज्वेलर्स। इकराम भाई वहां पर मौजूद होते हैं। बल्कि मैं रूबी ज्वेलर्स का जब मैं जिक्र करना चाहती हूँ तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपने कान छिदवाने हैं या आपने जेवरात की किसी किस्म की रिपेयर भी करवानी है तो रूबी ज्वेलर्स को एक बार मौका जरूर दे दीजिएगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ग्रांट्स कैनेडा प्रोविंशियल एंड फेडरल दोनों लेवल्स पे मौजूद हैं। बाज़ औक़ात आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, 12 साल से छोटी उम्र के हैं, आप अकेले रहते हैं, या यूनिवर्सिटी गोइंग भी आपके अगर बच्चे हैं, देर आर सम लोन्स, लोन हमें वापस करने पड़ते हैं, वो ग्रांट्स जो हैं, और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इन ग्रांट्स को अवेल नहीं करते। मैंने जाती तौर पे, मेरा बेटा जब यूनिवर्सिटी गया, वी डिड नॉट नो फर्स्ट टू इयर्स में वी डिड नॉट अवेल इट, बिकॉज मुझे ओसैप का कॉन्सेप्ट ही ये था कि ओसैप इज अ लोन, बट ओसैप की ग्रांट भी है। यस, इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप किसी गवर्नमेंट के बेनिफिट पे ना हो वगैरह 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 वगैरह। ठीक, तो बहरहाल ये ग्रांट्स के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप नंबर ले लीजिएगा मिस्टर खान 7690241। आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो ये तमाम स्पॉन्सर्स को देख भी सकते हैं। तो बजाय इसके कि मतलब ना होने से बेहतर है आप उनको फीस दें और हैव योर ग्रांट, हैव योर शेयर। ठीक, चलिए जी, ये भी बात हो गई। इस वक्त मुलाकात का वक्त हुआ करता है, मेरे काबिल एहतराम जनाब आशर अजीम साहब से मुलाकात का वक्त हुआ जाता है। आशर अजीम साहब ने जो जिंदगी में जो खिदमात अंजाम दी हैं, जाहिर है इन्होंने पब्लिक सर्विस का एग्जाम देने के बाद इस पोजीशन पे आते हैं, कोर्सेज को अटेंड किया, उन लोगों के साथ मेल मुलाकात रही। इस वक्त भी अतरमिन अल्लाह की बात कर लें या पाकिस्तान के एक 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 ब्यूरोक्रेट के बारे में मेरी उनसे बात हो रही थी, आई वुड नॉट नेम हिम, तो कहने लगे आरफा जी ओ तो मैं रूममेट सी, मेरे पहली बारी मैं कहावत सुनी, कहते मेरे को ए पूछो दे पैर दे नाखून के हो जाए, मैनु ए भी पता है। आशर अजीम साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ सर, अस्सलाम वालेकुम।
थैंक यू आरफा जी, थैंक यू। एवरी टाइम आप मेरी असल में इतनी तारीफ कर देती हैं कि फिर मैं फूले नहीं समाता। देखे मैं स्क्रीन में भी इधर उधर हो रहा हूँ, कभी फूल रहा हूँ कभी
नहीं। सर मैंने ये गलत तो नहीं कहा, क्योंकि देखिए आप यू आर अ मैन इज नोन बाय द कंपनी, एंड आपकी जो कंपनी थी इन बड़े अफसरों के साथ आपकी कंपनी उठना बैठना, रिफ्रेशर कोर्सेज को अटेंड करना, तो मैंने नाम नहीं लिया उस अफसर का और मेरा ख्याल है शायद आप भी ना लें, तो कोई बात हुई तो माजी भाई इट वॉज वेरी स्ट्रेंज एग्जाम्पल, कहने लगे आरफा जी असी को कमरे च रेंदे सी, मैनू ए भी पता है पैर दे नाखून के हो जाए ने, जराबा दे बगैर भी मैं ओदे पैर
मैंने भी पहले ये
आई नेवर हर्ड दिस कभी नहीं सुनी। आशर अजीम साहब आज अगर मैं पाकिस्तान की तरफ निकलती हूँ तो इट्स सैड जो पाकिस्तान की दो चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, एंड ऑफकोर्स मैं इंटरनेशनल अफेयर्स की भी यहाँ पे बात थोड़ी सी जरूर करूंगी। ये आज ऑपोजिशन में जो हंगामा आराई के दौरान इलेक्शन एक्ट में तरामीम, यानी 2017 के इलेक्शन एक्ट में 2024 की जो तरामीम होती हैं और इसमें सेक्शन 66 और सेक्शन 144 का तस्करा मुतारफ कराया गया और अल्टीमेटली जनाब रो धो के तरामीम कर ली गई और अब इनको तब से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जब से इस इलेक्शन से पहले से जब से ये चाहते हैं, इसको भी उन्होंने चैलेंज कोर्ट में कर देना है, तो आप क्या समझते हैं ये कौम का पैसा जाया किया जा रहा है, इन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग?
जैसे आपने कहा जी कि आप इंटरनेशनली भी कोई बात करेंगी तो इशू यह है कि दुनिया में एक असूल तो वाजे है और हमेशा से था, अगर किसी को गलत फहमी थी तो अब बिल्कुल दूर हो गई होनी चाहिए, और वो जो इंटरनेशनली हो रहा है सारी दुनिया में वो आपको क्लियर है कि जी ताकत के अलावा कोई और कानून दुनिया में
जुबान है ही नहीं।
हाँ जी, है ही नहीं। अब वो चाहे यूएन हो, मतलब अगर अमेरिका चाहे तो वो कह देता है कि जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो हमें चैलेंज करेगा जो, तो हम उसकी फैमिली को भी नहीं आने देंगे और हम उसके और ये उनकी सेनेट लिख के भेजती है और आप 1,00,000 औरतें और बच्चा मारते हैं और जो मर्जी कर लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सो दुनिया में असूल तो हमेशा से एक ही है और सिर्फ गाये बगाये हमें गलत फहमियां होती रहती हैं कि जी शायद कोई और भी असूल है ताकत के अलावा, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं। हमने इंसान ने एज सच कभी उससे आगे तरक्की नहीं की और हम अपनी मिस्टेक्स रिपीट करते आते हैं। आज हम आपके सामने बांग्लादेश है, आपके सामने हर जगह, मतलब आप जहां जिसके हाथ में ताकत है वो कर रहा है जो वो कर सकता है। तो मैं क्या गुजारिश करूं आपसे कि असूल कानून की तो दुनिया में कोई ना जगह है ना गुंजाइश है ना पहले थी ना, और पाकिस्तान में पिछले 75 साल में आप मुझे कोई दौर बता दीजिए जिसमें असूल कानून पे कोई चला है और आज हम यहां खड़े। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई मीन पार्लियामेंट ने क्या, मैं पहली तो बात यह है कि जी चूंकि आई वॉज वर्किंग और ये आज ही की पॉसिबली डेवलपमेंट्स हैं जिसमें ये हुआ है, तो आई हैव नॉट हैड दी अपॉर्चुनिटी टू रीड थ्रू कि जी क्या चेंजेस की गई हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है। दैट वी कैन, इफ आई गेट दी अपॉर्चुनिटी टूडे एंड नेक्स्ट टाइम वी कैन टेक इट अप इफ यू सो डिजायर, कि मैंने उसे पढ़ा हो तो फिर मैं प्रॉपर कमेंट कर सकूंगा। लेकिन ये बात तय है कि जिसके हाथ में ताकत है वो अपनी मर्जी करता है, वो चाहे घर हो चाहे इंटरनेशनल दुनिया हो।
सर मैं, आपने जब ये बात की ना, आपने बड़ी खूबसूरती से बात को घुमा दिया। मेरा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में इलेक्शन होते हैं और अमेरिका का बयान आता है कि ये इलेक्शन अनफेयर थे, इसमें घपला हुआ, बेईमानी हुई। जब बांग्लादेश के इलेक्शन होते हैं और हसीना वाजिद साहिबा जीत जाती हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में कोई ऐसा सच बयान नहीं आया, हालांकि वाजे तौर पे फॉर्म 45-47 कहीं भी आपस टैली नहीं कर रहे। ठीक है, बेशुमार रिजल्ट्स बाद में निकले, आपके उस वक्त के वजीर आजम जनाब काकड़ साहब बाद में एक बंदे के मुंह लगते हैं, कहते हैं मुंह मत खुलवाना वरना मैं तुम्हें बता दूंगा कि फॉर्म 45-47 की हकीकत क्या है। अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। आज बांग्लादेश में हसीना वाजिद साहिबा की ईंट से ईंट बज गई है, मगर स्टूडेंट्स विन कर गए। अब मैं जिस सिम्त पे जा रही हूं, आपने भी लफ्ज कहा कि एक तरफ जमहूरियत का राग अलापने वाले जब 39,000 लोग मर जाते हैं तो वहां उनको नजर नहीं आता। 7 अक्टूबर के बाद आज दोबारा वो कह देते हैं कि हम असला भी उनको प्रोवाइड करेंगे। दूसरी तरफ जहां पे पावर डिसबैलेंस जिन कंट्रीज की वजह से हो रही है, विच इज चाइना एंड रशिया, यूक्रेन की बात होती है, तो अस्पताल में अगर एक धमाका होता है तो आप उन लोगों को बैन भी करते हैं, उन लोगों को पे सैंक्शंस भी लगाते हैं। तो इसका मकसद ये है कि जो G7 के कंट्रीज भी हैं तो वो दुनिया की बेहतरीन अकवाम, मगर इंसाफ वहां पर भी नहीं। दिस इज व्हाट यू वांटेड टू से।
देखिए, जब आपने बात की थी ना कि अब मैंने बड़े बड़े अफसरों के साथ जिंदगी गुजारी है फलाना, तो मैं वहां पे कमेंट एक करना चाह रहा था कि अपनी जितनी भी छोटी बड़ी जितनी जिंदगी है, मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है जी, कि बड़ा आदमी कोई नहीं होता। सिर्फ अल्लाह की जात बड़ी होती है और हर एक में हम में कब आते हैं, और मैं किसी को बड़ा आदमी नहीं मानता, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। दूसरी बात यह है कि किसी ममालिक को अच्छा या बुरा मैं नहीं मानता, यह सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की खेल है जी। और लेकिन एक चीज हमें इसमें याद रखने की जरूरत है, ये सेल्फ इंटरेस्ट के लोग जीत क्यों रहे हैं। देखिए, जब नॉर्थ अमेरिका में एक यहां के ओरिजिनल एक रेजिडेंट्स थे ना जी, जो यहां के नेटिव्स थे, वो बड़े अच्छे लोग हो सकता है, हो सकता है बड़े ईमानदार लोग हों, लेकिन आज वो एग्जिस्ट करते
कॉर्नर्ड वेरी बैडली कॉर्नर्ड,
जो यहाँ के नेटिव अमेरिकन थे वो आज एग्जिस्ट करते हैं, वो वाइप आउट हो चुके हैं इस दुनिया से,
कॉर्नर्ड कर दिए ना उनको, उनके साथ वही सलूक किया जो एक जमाने में चाइना के साथ किया गया था, उनको शराब और सिगरेट के एवज जो नेटिव्स थे, चाहे वो अमेरिका के हैं चाहे वो कनाडा के हैं, दे आर कॉर्नर्ड इन सर्टेन एरियाज।
मैं सवाल जो करना चाह रहा हूँ आपसे, जो मैं पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्यों कुछ कौमें दूसरी कौमों को खत्म करने में कामयाब हो जाती हैं और आज तक दुनिया में किसी ने आवाज नहीं उठाई, इन कौमों में खासियत क्या है? सो अच्छाई या बुराई या असूल या कानून की बात नहीं है, जो लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनके हाथ में ताकत है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए आज इसराइल की हम बात कर रहे हैं कि उसने 37,000 औरतें और बच्चे मारे और कोई बोलने को तैयार नहीं है, तो उसकी वजह क्या है? क्या वो लोग दुनिया में बहुत ज्यादा हैं? नहीं, उसकी वजह यह है कि उसके जो एक्सपर्ट कम्युनिटी है वो ऑर्गेनाइज्ड कॉम है, वो इतने ऑर्गेनाइज हैं और उनमें आपस में इतना इकट्ठ है, वो एक ट्राइब है, मतलब वो उसको आप मजहब के तौर पे ना देखें, वो एक ट्राइब है और वो इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड है और वो इंतहाई हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमने दुनिया में सर्वाइव करना है हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, हमें राइट और रॉन्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तक दुनिया को फर्क नहीं पड़ा, जो कौमें इस पे बहुत बिलीव करती थी वो वाइप आउट हो गई। आर वी ऑर्गेनाइज्ड? आर वी यूनाइटेड? हैव वी एवर बीन ऑर्गेनाइज्ड? हैव वी एवर बीन यूनाइटेड? एंड व्हाट डू यू थिंक द वर्ल्ड इज गोइंग टू डू टू अस?
बहुत शुक्रिया सर, आप ही से सुनना चाहती हूँ और आप ही से पूछना चाहती हूँ। मैं तो पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न जरूर हूँ। पाकिस्तान की ऑर्गेनाइज की जब आपने बात की, बड़ी खूबसूरत आपने बात की, आई थिंक वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में हम बात करते हैं दैट इज द आर्मी, वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली नशे के ताकत के नशे से चूर वो इदारा। आज की खबर है कि चेयरमैन जो सेनेटर सलीम मांडी वाला, उन्होंने कहा है कि हमें इत्तला मिली है कि एजेंसियां वजीर आजम ऑफिस को रिपोर्ट भेजती हैं और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अफसरान को उनके ओहदों से हटा दिया जाता है। ये बड़ी अच्छी भली रिपोर्ट है, मगर आगे उन्होंने कहा है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या जो चेयरमैन है, हालांकि इन्होंने रिटायर होना था इन जनवरी में, उसने प्री रिटायरमेंट कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली है। प्रेशर्स इतने ज्यादा हैं जो आपके पॉलिटिशियंस हैं उनके, मगर जब मैं ये लफ्ज पढ़ा जो इसकी हेडिंग है कि एजेंसीज रिपोर्ट भेजती हैं और वजीर आजम उन अफसरान को हटा देते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड दैट इज पाकिस्तान आर्मी, क्या वजह है कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं कर रहे एंड दे आर रिपीटिंग वन आफ्टर एन अदर देयर मिस्टेक्स?
एंड दिस इज ऐसी तरह, ठीक है जी, कि आपके पास जो पोटेंशियल था वो आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने आप में से जब मैं मालिक बना रहा था तो मेरी थॉट क्या थी, एग्जैक्टली ये थॉट है कि यार कोई इस मुल्क की ओनरशिप क्यों नहीं लेता। ओनरशिप का मतलब ये नहीं है कि जी एक मॉब होगा उस मुल्क में या एक हजूम के हवाले वो मुल्क कर दिया जाए, जो उसको जो थोड़ी बहुत उसमें रुमक रह गई है मुल्क होने की वो उसको भी उखाड़ के फेंक दे, लेकिन मलकियत लेने का ये मतलब था कि आप जिम्मेदारी लें अपने मुल्क की, आप उसके अच्छे बुरे को अपनी अपनी जात से पहले रखें। मैंने कई दफा ये बात की, जिस दिन हमने एयरफोर्स ज्वाइन की थी तो हमें हमारे वो थे एक जो जो जो, जो ऑफिसर विंग से एक ऑफिसर आते हैं तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट कैसर थे, दिस इज 7 September 1991 एंड आई स्टिल रिमेम्बर हिज वर्ड्स, ही सेड इन योर लाइफ गेट योर प्रायोरिटीज राइट, और उन्होंने कहा आपकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो आपकी फैमिली, दिस इज वॉट ही सेड, ही सेड सेकेंड प्रायोरिटी इज पाकिस्तान, थर्ड प्रायोरिटी इज पाकिस्तान एयरफोर्स, ठीक है जी। सो हमारी जो प्रायोरिटीज होती हैं वो पाकिस्तान हैज टू कम first Third. Before army comes in. Hmm. Unfortunately, हमारे यहाँ आर्मी कम्स इन फर्स्ट. अच्छा, अब वो जो उन्होंने बात की थी ना कि योर फैमिली इज योर प्रायोरिटी, तो वो शायद प्रॉब्लम वहां पे है. हालांकि फैमिली प्रायोरिटी है और होनी चाहिए, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरी फैमिली किस एनवायरमेंट में बेहतर चलेगी. ये बहुत जरूरी है समझना. देखिए, मैं हमेशा मुल्कों के बारे में ये मिसाल देता हूं कि मुल्क एक एक जहाज, बहरी जहाज की तरह. सो अगर ये दुनिया एक समंदर है और इस मुल्क, इस दुनिया में 190 बहरी जहाज हैं जो कि ममालिक हैं, तो इसके रहने वाले जो मुसाफिर हैं ना, वो जहाज के साथ डूबते हैं. और जहाज के क्रू जो होता है, उसके ट्रेडिशन ये रहा है कि वो जहाज कभी नहीं छोड़ेगा, वो उसके साथ.
कैप्टन नेवर लीव्स द शिप.
जी, वो उसके साथ डूबेंगे. हमारे यहां प्रॉब्लम ये है कि हमने उस मुल्क की ओनरशिप नहीं ली, उसका क्रू कोई है ही नहीं. हर शख्स इस चक्कर में है कि मेरी लाइफ बोट बड़ी स्ट्रांग हो, मैं इमिग्रेट करके फॉरेन कहीं निकल जाऊं. और मैं उसमें सबसे ज्यादा ब्लेम हमेशा से मैंने फौज को किया कि भाई बाकी तो किसी के हाथ में ताकत नहीं थी, आपके हाथ में तो ताकत थी यार, आप तो कुछ भी कर सकते थे आप. और ये हम जो छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, जी मैंने 1,00,000 रुपए कमा लूं, मैं 1,00,00,000 रुपए कमा लूं, मैं 1,00,00,000 रुपए कमा लूं, मेरे भाई अगर ये जहाज बेहतर चलना शुरू हो जाए तो हम सब 1,00,00,000 रुपए कमा सकते हैं. आप और अगर ये गुर्बत गिरती जाएगी तो आप में से ना किसी की इंडस्ट्री रहेगी, ना किसी की जमीन की कीमत रहेगी, ना किसी की जान महफूज रहेगी. आपको एक कम्यूनल इंटरेस्ट को पहले रखना है. मैंने मान लिया कि मेरी फैमिली बड़ी जरूरी है, मेरी पहली प्रायोरिटी है, लेकिन मेरी फैमिली वैक्यूम में नहीं रहती. मेरा बेटा उस वक्त तक सिक्योर होगा जब बाकी सब के बच्चों को एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड में हर चीज बराबर मिलेगी. मैं अगर ये समझूं ना कि एक ऐसी सोसाइटी में जिसके बाकी सब के बच्चे मार रहे हैं उसमें मेरा बेटा सिक्योर रहेगा, तो दिस विल नेवर हैपन. ये आप बेवकूफ हैं.
सो मेरा यहां कंसर्न आ रहा है कि दुनिया इज अ ग्लोबल विलेज नाउ. आज बांग्लादेश में जो ये सूरत हाल हुई है, ये स्टूडेंट्स लेके आए हैं. इवन जो आर्मी ने डायरेक्ट फायर नहीं खोला स्टूडेंट्स पे, मगर दे वांटेड टू ब्रिंग इन केयर टेकर गवर्नमेंट. स्टूडेंट्स का नो, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीबडी अपॉइंटेड बाय द आर्मी और एनीबडी एल्स. जिस बंदे को स्टूडेंट्स लेके आना चाहते थे और जिस शख्स ने उन मुल्क की गरीब दही औरतों के लिए काम किया, उनको टूल्स प्रोवाइड करके उनको जिंदगी के ऊपर लगाया था, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो उसको लेके आए हैं. उनको देखने के बाद, श्रीलंका को देखने के बाद, व्हाट डू यू थिंक? ये सवाबी में भी एक जलसा हुआ है और बेवकूफों की दुनिया में रहने वाले ये कह सकते हैं कि वहां पे लोग नहीं है. एक जम्मे गफीर था वहां पे, इसमें कोई शक नहीं है. आप क्या समझते हैं कि which direction we are going?
I would not agree with mob rule. देखिये, mob जो है ना जी, वो दुनिया की सबसे मेरे ख्याल में गलत force है. मैं पहले भी आपसे गुजारिश की कि जी दुनिया में सिर्फ वो कौन ताकतवर है जो organized है. और mob organization की बिल्कुल opposite form है. और mob के किसी भी फैसले से मैं अग्री नहीं करता. देखिए, चाइना में आज से बहुत साल पहले टियानमेन स्क्वायर था जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और उन बहुत से स्टूडेंट्स ने एक एक कोर्स चाहते थे. yeah. अगर चाइना उन स्टूडेंट्स की बात मान लेता तो आज चाइना चाइना ना होता. ठीक है जी. सो
अमेरिका उसी को तो रगड़ता है कि वो कहता है 10,000 स्टूडेंट टियानमेन स्क्वायर में मरे थे. चाइना कहता है नहीं थे 10,000 मरे, साडा मुल्क ऐसी जो कर रहे हैं सानू पता है की कर रहे हैं.
देखिये, अभी 37,000 लोग मरे हैं, औरतें और बच्चे जिनका कोई ताल्लुक नहीं है अभी तक मर रहे हैं. दुनिया में कोई बात करने वाला है?
39,000. बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही.
हाँ जी, तो गुजारिश ये है कि मैं फिर वही कहूंगा कि एक मुल्क अगर अल्लाह ने दे दिया है तो भाई आपस में बैठ के जरा किसी तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, थोड़ा सा पढ़ लिख लो, थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज बनाओ, अपनी इकोनॉमी. देखिए, अब हर शख्स लगा हुआ है कि जी पाकिस्तान में, मैं आईपीपीज के बारे में ऐसे कल बैठा पढ़ रहा था कि क्या, हर शख्स लगा हुआ है जी पाकिस्तान में बिजली बड़ी महंगी है, बिजली बड़ी महंगी है. यकीनन है, इट इज 0.086 सेंट्स पर किलोवाट आवर, ठीक है जी. नाउ इफ यू लुक एट द प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपसे बहुत ज्यादा ममालिक में यू आर अमंगस्ट द लोअर टीयर्स, आपको ये महंगी लग क्यों रही है? है महंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि जी बाकी दुनिया के साथ हमें कंपेयर करना चाहिए क्योंकि उनकी इनकम हमें देखनी पड़ेगी. तो सवाल यह है कि चीजें महंगी या सस्ती तब होती हैं जब आपकी इनकम क्या है उस पर डिपेंड करता है. अब आपने प्रोडक्शन तो करनी कोई नहीं, इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके पास जितनी है उस इलेक्ट्रिसिटी को आप सिर्फ, आपकी कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है? जब आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं है तो फिर आपका डॉलर जिस तरफ जा रहा है तो आपकी तो हर चीज महंगी होगी ही होगी. सो अगर आपने ऑर्गेनाइज नहीं होना, अगर आपने यूनिवर्सिटियां नहीं खोलनी, अगर आपने इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करना, अगर आप ये कहते हैं कि इसके बाद हम जो, सो मैं आपको एक मिसाल देता हूं. आप फर्ज करें अपने दफ्तर रोज आती हैं और आपकी गाड़ी टूटी फूटी है, ठीक है जी. वो आधा टाइम पे पहुंचती है, आधा टाइम खड़ी हो जाती है कहीं पे, कभी धक्का लगाना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है. एक दिन आपको इतना गुस्सा आता है आप कहती हैं मैं माचिस निकालूंगी और आज मैं इस गाड़ी को आग लगा दूंगी. मैं कहता हूं कि बड़ी अच्छी बात है, आप जज्बात में आप इसे आग लगा दीजिए. मुझे ये बताइए कि कल सुबह दफ्तर आने का आपका क्या प्रोग्राम है? कल आपकी जिंदगी बेहतर होगी इस टूटी फूटी गाड़ी से या खराब होगी? सो मॉब का ये थॉट होती है, वो इमीडिएट इवेंट से आगे नहीं सोच रहे होते. आप इस गाड़ी को आग लगा दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, इन सारे चोरों को गोली मार दीजिए, या पुलिस भी बहुत खबीस है इसको भी मार दें, फौज भी बड़ी गंदी है इसको भी मार दें, हर शख्स को मार दें, पूरा मुल्क तोड़ दें, कल सुबह क्या होगा? और जो कौमें कल सुबह सोचे बगैर आज का दिन इस तरह की हरकतें करती हैं वो यही होता.
सर अभी आपने आईपीपीस का जिक्र किया, पाकिस्तान का अलमिया ये, अभी आपने जब आईपीपीस का जिक्र किया या मैं और आपके जो पॉलिटिशियंस जो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, आपके बेशुमार रिटायर होने वाले आर्मी के ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब वो रिटायरमेंट के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का सिग्नेचर्स करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें इतना जो पार्ट ऑफ द मनी है वी विल गेट इन अमेरिकन डॉलर्स, रहना पाकिस्तान में, रोटी पाकिस्तान में खानी है, खर्चे नौकरियां पाकिस्तान में करनी है. ये जिन कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की रुपए की बजाय अपनी रकम की वसूली यूएस डॉलर में करनी है. आपने आईपीपीज की बात की, टोटल 90 आईपीपीज हैं जिसमें से जो एक्टिव हैं या जो फाल हैं वो 42 हैं, बाकी आईपीपीज हैं वो पैसा भी ले रहे हैं, वो बिजली भी नहीं पैदा कर रहे. हमारा तो रोना सिर्फ ये है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, वो जो 90 आईपीपीज हैं, 90 में से 42 आईपीपीज फाल हैं और जो नई भी बिजली पैदा कर रहे तो वो पैसा अपना रिसीव कर रहे. बतेरे लोग पाकिस्तान से बाहर, अमेरिकन आम आदमी को डॉलर मिलने का नहीं है. मेरा तो रोना सर ये चीजों का है.
देखिए वही वाली बात है ना कि जी हम किसी चीज की इन डेप्थ में नहीं जाते. जब 1994 में ये अग्रीमेंट्स हो रही थी, अब अगर हम इस सब्जेक्ट पे आए तो आप ये देखिए कि जी सबसे पहली अग्रीमेंट हुई हबको के साथ. हबको की चार प्लांट्स और हैं उसके नीचे एक एक, एक सो बैरल मैं नाम इतना टाइम होगा इतना इतनी डिटेल में जा सकेंगे. जो हबको का सबसे बड़ा प्लांट है वो उस आपको पता है उस पर इन्वेस्टमेंट कितनी है? इट इज 1.9 बिलियन US डॉलर्स इन 1994. ठीक है जी. अब आप मुझे ये बताइए कि जब लोग, कोई भी शख्स इंटरनेशनली आपके मुल्क में 1.94 बिलियन डॉलर्स लगाएगा तो वो क्यों लगाएगा? तो उनके साथ आपने एक डील साइन की और आपने डील ये साइन की कि जी आपको हम यूएस डॉलर में 15-17% का रिटर्न देंगे. क्योंकि देखिए आपकी करेंसी पर तो किसी को कोई इतबार नहीं था ना जी. तो 1.9 बिलियन डॉलर
मर गया था, मर गया गरीब आदमी. वो पेंशन भी रुपए में लेता है, वो इन्वेस्टमेंट भी रुपए में करता है. इसका मतलब तो है जिसको अंग्रेजी आती है वो
गरीब आदमी अपने मुल्क में पावर प्लांट लगा लेता. लेकिन आप पावर प्लांट लगान जोगे नहीं थे ना जी, तो आपके पास बिजली, आपको पता है 1994 में कितने घंटे लोड शेडिंग थी और कितने घंटे कुछ था। अब मैं ये आपसे कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि दुनिया के किसी मुल्क में अगर आप इंटरनेशनली, मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आपके पास पैसे हैं आरिफा जी, और हम कोई छोटे मोटे पैसे की बात नहीं कर रहे, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं। आपको एक कंट्री कहती है कि जी आप ये $2 बिलियन मेरे मुल्क में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आप उनको क्या कहेंगी? आप उन्हें यह कहेंगे कि जी मेरा रेट ऑफ रिटर्न क्या गारंटीड है? वो कहता है जी मेरी करेंसी टका है, आप इसमें ले लिया कीजिए मुझसे पैसे। आप कहेंगी बेटा कल को तेरा टका जो है उसकी कोई कीमत ना रही तो मैं क्या करूंगी, मैं तो अमरीकी डॉलर में पैसा लगा रही हूं। तो मुझे तो ये बताओ कि मैं इंटरेस्ट रेट कितना मुझे हर साल दोगे? देखिए उस वक्त इंटरेस्ट रेट्स उनको ज्यादा दिए गए, 15-17% दिए गए, वो गाहे गाहे हम निगोशिएट करते रहे, अभी भी 12% पे हम हैं कि हम उनको डॉलर्स टर्म में 12% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, जो कि ज्यादा है, ऑन दी हायर साइड है। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई शख्स इन्वेस्ट करने को उस दौर में और आज उससे ज्यादा पैसा तैयार नहीं है, ठीक है जी। तो 12% इंटरेस्ट रेट है। अब हम इससे डिसएग्री कर सकते हैं कि वो डॉलर में नहीं रुपयों में होना चाहिए था, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उस वक्त 1994 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो डॉलर 30 रुपए का होता था, अब डॉलर 200 से पता नहीं कितने ऊपर है, मुझे लेटेस्ट मैंने यूएस डॉलर
34-35 का था। बिल्कुल आपने सही कहा। सर मैं आगे की तरफ मूव करना चाहती हूँ, मैं आपको ज्यादा टाइम आपका भी नहीं जाया करना चाहती। आईपीपीस का जब आपने जिक्र किया और आपने सपोर्ट किया कि जी इन लोगों ने इतना पैसा खर्च किया था, आई एग्री विद यू। 42 out of 90 42 आईपीपीस जो हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट जो हैं, वो लोगों ने पैसा लगा के लगाए थे, जो बकाया है वो तो सर एक्टिव भी नहीं, मगर वो गवर्नमेंट से पैसा तो ले रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए उनको कहे कि या तो तुम फिर बिजली पैदा करो।
वो एक्चुअली ये नहीं है, देखिए जो अगर आप जो टॉप आपके 10 आईपीपीज ले लें, तो क्योंकि आईपीपी एग्रीमेंट तो एक ही है ना जी, वो चाहे आप 45th पे अप्लाई करें चाहे आप फर्स्ट पे अप्लाई करें, तो हमेशा अगर आप टॉप के 10 ले लें तो आपको पता चल जाएगा। सो आपका जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट था वो ये था जिन लोगों से है कि अब मैं आपके, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आपको कहा गया कि $2 बिलियन लगाएं, आपने कहा कि मैं $2 बिलियन लगा देता हूं और मैं कोई 3000 मेगावाट बिजली जनरेट करूंगा। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। अब उसने कहा कि जी कल आप मुझसे बिजली खरीदते ही नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा? आपने कहा कि जी आपने जो इंस्टॉल्ड आपकी कैपेसिटी होगी हम उतने आपको पैसे देंगे। अब लोगों को इस बात पे यकीनन इतराज है कि जी वो उससे उसकी बिजली हमने खरीदी नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उसने उतने
जनरेट ही नहीं कर रहा। सर वो जनरेट ही नहीं कर रहा।
देखें जनरेट तो आप उससे अगर खरीदने, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम उसमें एग्जैक्टली उस, अबे मेरी तस्वीर धुंधली हुई, अभी दोबारा ठीक होगी। अच्छा जी देखिये इशू ये है कि हम चूंकि अब जल्दी में हमारा आईपीपी सब्जेक्ट नहीं था लेकिन उसमें चले गए हैं तो उस डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन बात यह है कि वो जनरेट करने के उसके साथ डील नहीं थी। उसके साथ डील ये थी कि तेरे पास तूने इतनी बिजली बनानी कि तूने कैपेसिटी लगानी है, हम तुझसे ये बिजली अगर हमें जरूरत ना हुई तो हम ओके। सो लेट मी काइंड ऑफ पुट दिस वे टू यू कि आपसे जिसने कहा कि मेरे मुल्क में आप पावर प्लांट लगाइए, तो आपने कहा जी मैं कितनी पावर का पावर प्लांट लगाऊं, क्योंकि जाहिर है आपके उतने पैसे खर्च होने थे ना बीच में, तो उन्होंने कहा जी आप 200 हॉर्स पावर का लगा दें। आपने कहा भैया अगर 200 हॉर्स पावर के तुमने मुझे फिर वापस लिया ही नहीं तो मैं 200 हॉर्स पावर लगाने के लिए $2 अरब खर्च कर दूंगी। उन्होंने कहा जी नहीं, आपने जो कैपेसिटी इतनी आपके पास 200 हॉर्स पावर की होनी चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे। उस वक्त तो आपका ये ख्याल था ना कि आपके मुल्क की ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी, आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चलेगी, आप लोगों से वो लेंगे। आपके कहने पे उसने 200 हॉर्स पावर का वो लगाया ना, अब उसका खड़ा है वो पड़ा हुआ, आप ले नहीं रहे उससे बिजली, तो इसमें आपका कसूर है, उसने उसका कसूर है। देखिए उसने तो इंजन लगाए हैं ना जी जितने आपने उसको कहे हैं, उसकी तो कॉस्ट आई वो।
چلیے سر، ویری سیڈ صورتحال ہے. مجھے آپ
دیکھیے، ہم نے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم جب سول سروسز اکیڈمی جوائن کی تو ہمارے ڈی جی صاحب تھے، ایڈمرل پتہ نہیں کیا ان کا نام تھا، ابھی میں بھول گیا ہوں. انہوں نے کرتار سے ابیوز بھی لکھا تھا بھٹو صاحب کے بارے میں، جس پہ جنرل ضیاء الحق نے ظاہر انہیں ڈی جی سول سروسز اکیڈمی لگایا تھا. اچھا، مجھے یاد ہے وہ دن کہ ہم ڈی جی صاحب کے پاس بیٹھے تھے تو ڈی جی صاحب نے ہمیں بتایا کہ جی وہ جب اسسٹنٹ کمشنر تھے، ڈی ایم جی کے وہ افسر تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بڑے ظاہر پیٹریوٹک تھے، آئیڈیلسٹک تھے. انہوں نے کہا جی پاکستان میں اس وقت اسٹیل مل لگ رہی تھی، تو کہتے ہیں کہ جی میں بھٹو صاحب کے پاس گیا، کہتے ہیں میں نے وہ فائل دیکھ رہا تھا اور کہتے ہیں میں بڑا انٹرسٹڈ تھا، میں فائل شام کو گھر لے گیا، میں نے پڑھا. کہتے ہیں جیسے جیسے میں فائل پڑھتا گیا تو کہتے ہیں آئی گاٹ ہاریفائڈ کہ یار یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی پاکستان میں. یہ تو نہ پاکستان میں وہ انرجی ہے، کوئلہ جو جس ٹائپ کا اس پہ یوز ہوتا ہے تو سارا آسٹریلیا سے امپورٹ ہوگا کیونکہ پاکستان میں ہے نہیں، اور جو پروڈکشن کی قیمت آئے گی اس سے جس پہ ہم میٹل بنا رہے ہیں، اسٹیل جو بنا رہے ہیں، یہ تو دنیا میں کسی بھی جگہ سے ہمیں مہنگا پڑے گا. تو یہ تو فیزیبل ہی نہیں ہے، یہ کمپنی نہیں چلے گی ان کے مطابق. وہ کہتے ہیں جی اگلے دن مجھے جب بھی موقع ملا، کہتے ہیں میں بھٹو صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان سے گزارش کی کہ صاحب یہ اسٹیل مل کی تو کوئی تک نہیں ہے. آج تک ہم روتے آئے نا کہ یار یہ اسٹیل مل سفید ہاتھی ہم نے پا لیے. تو بھٹو صاحب نے ان سے کہا کہ جی مجھے پتا ہے کہ یہ اسٹیل مل جو ہے یہ فائنینشلی وائبل نہیں ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان کر رہا تھا 1973 کی اسلامک سمٹ کے بعد، اس وقت گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ جی ہم اسلامک بلاک ایک بنا رہے تھے جو کہ ایک ریالٹی تھی، اس کے مطابق ہم نے پہلا اپنا بینک بنا رہے تھے، اس کے مطابق ہماری لیبر کی ایکسپورٹ مڈل ایسٹ کو، ان کا پیسہ، ایک پورا اپنا سسٹم، اور میٹلرجی میں ہم ان وجوہات کی بنیاد پہ جو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، ہم خود کفالت حاصل کرنا چاہ رہے تھے ایز این اسلامک بلاک. تو باقی بھی بہت سے لوگوں کی کمٹمنٹس تھیں آپ کے ساتھ کہ جی آپ یہ بنائیں، کیونکہ میٹلرجی میں یہ جس فارم کا سٹیل ہم بنانا چاہ رہے تھے وہ دنیا شاید ہمیں بعد میں بیچتی نہ.
ٹھیک ہے،
تو ہم ایک پاور پلانٹ لگا رہے تھے، وہ بعد میں دنیا تبدیل ہو گئی اور وہ پھر ہمارے گلے پڑا رہا اور بڑے عرصے پڑا رہا، اور آج بھی جب آپ اس کو ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ہم پرائیویٹ.
ہاں جناب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں اشر عظیم صاحب، آواز کٹی تھی، دیکھیں جی کینیڈا میں بھی ہو سکتا ہے. سر پاکستان میں اس وقت جماعت اسلامی بڑا سکسیسفلی اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر جناب مشتاق صاحب ایک نہیں دو بار ان کے اوپر ڈائریکٹ گولی چلائی گئی، ان پہ یا جو لوگ ان کے ساتھ تھے. ایک بار جب وہ راول پنڈی میں تھے ان کی وائف بھی ان کے ساتھ تھیں، اور یہ شخص جو تھا یہ تھا بھی فوجی گاڑی میں تھا، ایک دفعہ لے کے گیا، دوبارہ چڑھانا شروع کی، ایک دو بندے مر بھی گئے. پھر ایک اور جگہ کے اوپر یہ جب دو تین گروپس کا تصادم کروا دیا تو سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا کہ انہوں نے سینوں کے اوپر گولیاں چلائیں عوام کے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سچ این آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن شوڈ اوپن دیئر فائر آن دا پبلک؟
آئی تھنک اٹ از کنجیکچر ازنٹ اٹ کہ جی یہ جو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ فوج کی، کیا وہ بندہ ثابت ہوا کہ وہ کوئی فوجی تھا جس نے؟
جی سر وہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ فوجی تھا، وہ آیا بھی کوئٹہ کی طرف سے تھا، وہ فوجی تھا، ایک فوجی افسر کا بیٹا بھی تھا، اور سینیٹر مشتاق ڈزنٹ لائے، ہی از اے مین آف ہز ورڈز، ہی ڈزنٹ لائے. دس از ناٹ کوئی ایکس وائی زیڈ ہو سیڈ سو، دس از سینیٹر مشتاق.
سو آئی ناٹ شیور، میں نے پھر آپ سے وہی بات جو پوچھ رہا ہوں کہ جی مجھے نہیں پتا کہ وہ ثابت ہوا کہ جی کوئی فوجی تھا، اور پھر فوجی اگر وزیر محکمے کی انسٹرکشن پہ کام کر رہا تھا، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ تو اگر میں ایکٹ لون کر رہا ہوں تو اب دیکھیں فوج نے کچھ لوگوں کو وہ کیا ہے، کورٹ مارشل کیا ہے کہ جی آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے، اور ان کے حساب سے جی 14 سال کے لیے آپ کو ہم نے بند کیا یا جو بھی کیا. سو اف سمبڈی
سر نکال لیا کرنل انعام نے ان کو، جن کو سزائے موت آپ کے آرمی نیول آفیسر جن کو دی تھی، कर्नल इनाम ने उनको निकाल लिया, सजाए मौत दे दी थी उनको, और उनको काउंसिल भी नहीं दिया गया था जब अदालत में उनके खिलाफ ये मुकदमा लड़ा गया था, उनमें से किसी एक को काउंसिल नहीं प्रोवाइड किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल इनाम ने निकाल लिया उनको उसमें से, जो डेथ पेनल्टी उन पे डाली है, डेथ का उनको सजा दी थी। He took them out of that.
So, I don't know who Colonel, Lieutenant Colonel Inam is and what is the background and which case are we talking about specifically.
Naval, five naval officers. Anyways.
So, उन्होंने क्या किया था जो उन्हें डेथ पेनल्टी थी? देखें, अगर हम कोर्ट मार्शल के हिसाब से जाते हैं तो कोर्ट मार्शल का तो एक अपना तरीका है, वो तो एक अपनी उनकी कोर्ट है और वो उस तरह उससे डील किया जाएगा,
मगर काउंसिल तो दी जानी चाहिए ना, दिस इज नॉट।
देखें, अगर कोर्ट मार्शल में काउंसिल दी जाती है तो काउंसिल बिल्कुल दी होगी, ये मेरा तजर्बा कहता है कि जी। मैं बल्कि इस पे आपको एक कि अगर वक्त है तो मैं आपको छोटी स्टोरी सुनाऊं। हुआ यह कि मैं कस्टम्स में जब गया तो पहली दफा मैं कोई 8 महीने बाद सस्पेंड हो गया। अच्छा, और मैं सस्पेंड कैसे हुआ कि जी एक कोई चीज है, एक फाइल थी, वो एयरपोर्ट से शॉटगन्स इंपोर्ट हुई थी, कोई 100 शॉटगन्स थी और उनकी वैल्यू के लिए वो मेरे पास आई कि जी $80 कीमत होनी चाहिए या $87 पर शॉटगन, तो वो मैंने उसकी $87 कीमत लगाई थी। और कुछ दिनों बाद मैं सस्पेंड हो गया तो पता चला कि जी पाकिस्तान के बहुत सारे अफसरों में मैं भी सस्पेंड हूं। अच्छा, ये पता चला कि एक साहब थे अंजुम शाह साहब, उनको पाकिस्तान में असले की इंपोर्ट का शॉटगन असेंबली का लाइसेंस दिया गया था, उनसे गवर्नमेंट की नहीं बन रही थी, तो गवर्नमेंट ने यह कहा कि जी हम सारे अफसर जो हैं ये असल में असला आया ही नहीं है, या पता नहीं क्या एक अजीब सा केस बनाया। और अच्छा जी, तो हुआ यह कि मुझ पर एक इंक्वायरी थी जैसे सारी दुनिया पे हो रही थी, तो मुझे कराची बुलाया गया, मैं गया वहां पे चीफ कलेक्टर साहब के दफ्तर के बाहर, मुझे सुबह 10 बजे बुलाया गया था, मैं चला गया। एक इंस्पेक्टर था कस्टम का, वो वहां बैठा हुआ था, मुझे कहता है जी आप आ गए हैं? मैंने कहा जी जी मुझे बुलाया गया था, मैं आ गया हूं। कहता है कि जी बात यह है कि आप चले जाएं क्योंकि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा भैया अगर मुझे गिरफ्तार करना जरूरी है तो आप कर लीजिए, मतलब मुझे आपने बुलाया तो मैं तो आऊंगा, मैं क्यों चला जाऊं, मैं अगर जाऊंगा तो आई से कि कहते हैं जी बहरहाल मैं आपको मौका दे रहा हूं, या तो आप 3 बजे आ जाइएगा या आप चले जाए, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपको गिरफ्तार कर लें। मैं कहा जी ठीक है, मैं 3 बजे फिर आ गए, मतलब मैंने क्या किया है जो मैं भाग जाऊं, मैं क्यों चला जाऊं, वाई। 3 बजे अब मैं उसके दफ्तर के बाहर बैठा हूं और 4 बज गए, 5 बज गए, वो सीधे मुंह जा ही नहीं रहा, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, मैं फिर उसके सामने पहुंच जाऊं। मैं सीधा चीफ कलेक्टर के दफ्तर गया, मुझे नहीं जानता था मैं चीफ कलेक्टर साहब को, बहुत बड़े अफसर थे, मैं असिस्टेंट कलेक्टर था। अच्छा, मैं उनके पास जो गया, खलील साहब थे, मुझे नहीं पता था पहले, मैं खलील साहब के पास गया, मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम, उस समय मैं बड़ा था, यंग था, मैं कहा साहब बात यह है कि मैं एक्स एयरफोर्स हूं और मुझे अगर कोर्ट मार्शल भी किया जाएगा ना तो मुझसे सीनियर ऑफिसर मेरी इंक्वायरी करेगा, मुझसे सीनियर ऑफिसर का मुझे आपने एक इंस्पेक्टर लगाया हुआ है कि जी जो मेरे साथ सीधे मुंह बात नहीं करता, और मैं 3 बजे से इधर बैठा हुआ हूं और अभी आप टाइम देख लें 5 बज रहे हैं, और मतलब एक बंदा बार बार मुझे कहता है तू चला जाए या भाग जाए, व्हाट इज दिस। सो अच्छा, मुझे नहीं पता था कि खलील साहब खुद एक्स एफओस, उन्होंने मुझे उस वक्त तो यह नहीं बताया, कहते यंग मैन यू आर वेरी एंग्री बुलाओ, उन्होंने एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, और उन्होंने डिप्टी कलेक्टर साहब थे उन्हें बुलाया कि जी ये आशा साहब हैं, ये आपके दफ्तर में बैठेंगे, आपने इनको बुलाया है, आपने जिस वजह से भी बुलाया है इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, सारी बातें लिखें जो आपने करना है करें, और उसके बाद फिर मुझे बताएंगे, और आशा साहब आप जाने से पहले मुझे मिलेंगे, भले आप अंदर जा रहे हो अरेस्ट हो रहे हो। मैंने कहा साहब मैं बिल्कुल आपसे मिलूंगा। सो बात यह है कि जी फौज का कम अज कम मुझे ये तजर्बा यकीनन है कि अगर वहां पे कोर्ट मार्शल भी होगा तो उसका एक तरीकाकार यकीनन होगा, और ये नहीं हो सकता कि जी उसको काउंसिल अगर कानून में वहां पे प्रोवाइडेड था तो नहीं दिया गया होगा। अ लॉट ऑफ दिस वुड बी कंजेक्चर बिकॉज इट डज नॉट हैपन, किसी की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, ठीक है, अब वहां पे वाहिद पर्सनल दुश्मनी यह समझी जाती है जब आप अपने लोगों को सपोर्ट न कर रहे हो, उसमें भी आपको अगर काउंसिल चाहिए तो आपको काउंसिल दिया जाएगा। सो आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि जी अगर कुछ ऐसा हुआ कि जी उनको काउंसिल नहीं दिया गया था या फलाना नहीं किया गया था, So, but I since
Thank
I don't
you very much, جناب اشر عظیم صاحب سے میں نے بات چیت کرائی بسر میرے ادارے اگر اتنے ہی اچھے ہوں اور ہیں اس میں کوئی شک نہیں مگر انفارچونیٹلی کنٹامینیشن بہت زیادہ ہے ہماری زندگیوں میں اور میں پھر الٹیمیٹلی میں یہی آتی ہوں کہ جیسی قومیں ہوتی ہیں ویسے ہی لیڈر ہوتی ہیں. آج آپ نے دو تین باتیں کی ہیں اور آپ نے جب موبس کی بات کی ہے تو سب موبس تو G7 میں بھی ہیں. آپ موبس کی بات کرتے ہیں جنوری میں امریکہ میں کیا ہوا تھا, آج آپ دیکھ لیں وہاں پہ جو الیکشن میں بھی جو لفظ استعمال ہوتے